The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.
الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد المرسلين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الصلاة والسلام عليك يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله الصلاة والسلام عليك يا نبي الله وعلى آلك وأصحابك يا نور الله Dear viewers of Madani channel, once again, welcome to our Path to Success transmission. And today we have a beautiful topic about the two blessed personalities in our life. The two blessed personalities in our life is our mother and our father. And no doubt their status and dignity are mentioned in Holy Quran, in Ahadith, and in many places in Quran Pak, our Lord, our Creator, our Rabb Azza wa Jal has commanded us to be good to parents and do favor to them. So inshallah, today our topic, serve your parents. Why so important to serve your parents? Why so important to humble with your parents and obey the commandments of your parents? Inshallah, today we will discuss and what are the consequences if you don't respect your parents. Inshallah, Azza wa Jal, our mashallah, beautiful Muballighin with us, Rizwan bhai, all the way from Darwi. Hafiz bhai, mashallah, no doubt. People always ask about Hafiz bhai, and then mashallah, Harun bhai with us today. A beautiful Quran will recite by, inshallah, our Harun bhai. And he start always with the blessings of Durood e Pak. The beloved Rasul sallallahu ta'ala alayhi wa sallam has said, those who love each other for the sake of Allah azza wa jal, meet and shake hands and send peace and blessings upon me. Before they separate from each other, Allah Azza wa Jal will forgive their past and future sins. Sallu ala al-Habib sallallahu ta'ala ala Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Aayye, kalam sunte hain inshaAllah Harun bhai se.
Sallallahu alayhi ya Rasool Allah wa sallam alayka ya حبيب الله قلت حيلتي أنت وسيلتي قلت حيلتي أنت وسيلتي أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله أدركني يا رسول الله گھٹائے غم کی چھائے دل پریشاں یا رسول اللہ تمہیں اب کچھ کرو ماہ رسالت یا رسول اللہ سفینے کے پرخچے اڑ چکے ہیں زور طوفا سے بچا لو میں بھی ڈوبا ہے میری جا یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ میں ہوں سنی رہوں سنی میں روح سنی مدینے میں میں ہوں سنی رہوں سنی میں روح سنی مدینے میں بقیے پاک میں بن جائے تربت یا رسول اللہ سنہری جا لیا ہوا ہو اور مجھ سا سے ہو ملے قدموں سے نہ جانے جانا یا رسول اللہ قلت خیلتی التا وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ہمیں ہر یا گنبد کے تلے قدموں میں مات آئے ہمیں ہر یال گنبد کے تلے قدموں میں مات آئے سلامت لے کے جاؤ دین و ایمان یا رسول اللہ مجھے مرنا ہے آقا گو کروں گا یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینہ میٹھا میٹھا ہے مدینہ پیارا پیارا ہے مدینے سے مجھے بے حد ہے الفت یا رسول اللہ میرے ہر دھڑکنے دل سے مدینے کی صدا آئے رہے ذکر مدینہ لب پہ ہر دم یا رسول اللہ قلت حیلتی انت وسیلتی ادرکنی یا رسول اللہ ادرکنی یا رسول اللہ
صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. Beautiful topic is about serving your parents, inshallah. The parents, and no doubt, they are very important in every person's life, and they are our means through which we are in this world because of their blessing. Any benefit, any blessing we are getting, end of the day, ہمارے والدین کی مرہون منت ہے. بیکاز اگر یہ نہیں ہوتے تو ہمارے دنیا میں آتے ہی نہیں. انہی کی وجہ سے ہم دنیا میں آئے, یہ ہمارے آنے کا ایک سبب بنے. دے آر مینس دا وی آر ان دس ورلڈ, سو وی شوڈ اسپیک وتھ دیم سافٹلی ہاؤ وی شوڈ ٹریٹ. اینڈ اسپیشلی جو آج کل کمپلینس ہیں رضوان بھائی, ایوری سیکنڈ ہاؤ یو سی دا پیرنٹس دے آر اسٹرگلنگ بیکاز آف دا مس بہیونگ آف دیئر چلڈرن and because not dealing in a right way, and especially about the rights of the parent. Many of the youngsters, many people, they don't know the rights of the parents, but those who know, wo apne maa baap ko kehte hai na ki haathon mein utha ke rakhte hain. If you see in their house, they are full of blessing. Even they are in the rented house, but they are living like a king, they are living like in a palace because they have a duas of their parents with them. But those unfortunate people, those who are not behaving properly with their parents, وہ ہمیشہ دنیا میں بھی برباد ہوں گے اور آخرت میں بھی برباد ہوں گے.
Exactly right, Sayyid Saab. And the first point I'd like to make and stress is that parents are a blessing. and those who have their parents alive with them today, their mother and their father, they need to understand this as a blessing, a huge blessing, one of the biggest blessings that they have in their lives. Once we get this understand, once we have this qadr, an understanding that our parents are a blessing upon us, rather than how some people might view it as a burden or a responsibility, or these are some rites in Islam that I have to do. This is something that we should want to do. We should come forward to our parents and want to serve them. Because if we understand their status, we'll understand how much of a blessing and how much beauty they bring into our lives. Like you said, they are the means that we have come into this world. They are the ones that fed us when we could not feed ourselves. They are the ones that sat us upright when we couldn't sit up. They are the ones that dressed us when we could not dress ourselves. When we were completely dependent, we couldn't do anything. They were our source of help.
Okay.
Alhamdulillah Azza wa Jal. Now that we can feed ourselves, now that we can dress ourselves, now that we can sit up ourselves and stand around on our own two feet, we think we don't need them. We are better than them. They are a burden upon us. They don't know anything. We know everything. This is completely and utterly wrong. And sometimes people only understand this when their parents have left this world. Unfortunately, this is the case, that people only understand this when their parents have left this world.
Allah.
And when they feel that gaping hole in their lives that nobody else can fill.
Allah.
Nobody, no friend, no other family member, no acquaintance, no colleague, nobody can fill that gap. That a parent, that space, that status, that role in your life that a mother and a father did, nobody else can fill that. And unfortunately, then it's too late. And then you're full of regret, and then you're full of remorse. And sometimes people only understand this when it happens to them themselves. And then they understand, wow. When their children speak back to them, when their children leave them, then they'll realize, is this how I made my parents feel? Wow. We can understand the importance that Allah Azza wa Jal has given upon the rights of parents when He speaks about the rights of Himself with the rights of the parents. And He commands, worship only Me and show kindness to your parents. This is the level of the rights of the parents. Rasulullah sallallahu alayhi wa sallam has given so many examples, so many hadiths in Mubarak that no doubt we'll go over today. But one that I wanted to mention, that the one who pleases his parents has pleased Allah.
Subhanallah.
And the one who has angered his parents is worthy of the anger of Allah.
Allah.
So please understand that this is so important. One of the most important relations that we have in this world. And please understand that it is the rights, like you mentioned, every relationship has a right. Whether that's your children and you're a father, your wife and your husband, your parent and your child. But we do not prefer one right over the other. For example, let's not give all the rights to the wife and the children at the expense of the right of the parents. If we have all of these responsibilities and relationships, we have to manage all of these rights. You can't look after one right at the expense of another right. So let's talk a little bit about today about the importance of the parents' rights. This doesn't decrease. The rights of the parents are such that if we were to try and fulfill these for all of our life, we would not be able to.
Allahu Akbar.
We just focused on this. Let's forget about any other relationship, any other work. We spend all our living, breathing moments trying to fulfill the rights of our parents, our whole life. From cradle until grave, we will still not be able to.
That's right, yeah. That's right, Rizwan Bhai, mashallah, beautifully you have explained, and no doubt, even the entire life, if we serve our parents, still their rights not been fulfilled. Yes. So we, and in Quran Pak, if you look many places, Allah has commanded us, وَبِلْ وَالِدَيْنِ اَحْسَانَ. Or iske ilawa ahadith mein dekhe, many places. If you look in the practical life as well, you know, people normally what they do, वो क्या करते हैं, they start angry on their parents just to make other people happy. But remember, is your parents who sacrificed everything to build your life, not others, not your friends, not your next door neighbors, not your uncle, not your auntie. Is your parents who sacrificed everything to build your life. आपको स्टैंड करने के लिए जो किया ना सबसे ज्यादा दुनिया में, मैं पढ़ रहा था कि बहुत सारे लोग होते हैं, कंपटीशन होता है. एक शख्स दुनिया में हमारी लाइफ में ऐसा है, जस्ट वन पर्सनालिटी, जो आप खुद को नहीं, अपने आप से बढ़कर दूसरे को तरक्की याफ्ता देखना चाहता है, वो वालिद होता है. वालिद ये देखता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे कब निकलेगा. आपका दोस्त कभी आपको निकलने नहीं देगा, आपका नेक्स्ट डोर नेबर कभी भी नहीं चाहेगा आप उससे आगे बढ़ो. लेकिन दुनिया में एक पर्सनैलिटी ऐसी है जो बाप खुद चाहता है कि मेरा बेटा मेरे से आगे बढ़े. तो आप सोचे कि कितना प्यार और कितनी मोहब्बत होगी उसके दिल में, जो खुद दिल से चाहता है कि यार ये आगे बढ़े. और हम उसी की कदर नहीं करते हैं, हम दुनिया को खुश कर रहे हैं. सो डोंट क्या कहते हैं, मिसबिहेव विद योर पेरेंट जस्ट टू प्लीज अदर पीपल. दे आर योर जन्ना, दे आर योर है. ये याद रखिएगा, अगर इनको राजी किया जन्नत मुकद्दर होगी, और इनको नाराज किया. और आज एक मेजोरिटी है जो हमें कंप्लेन मिलती है. सो आज टॉपिक यही लेना था कि दोज हु आर वॉचिंग प्लीज रियलाइज योर सेल्फ. ये भी एक है ना कि मुसलमान को रियलाइज होना चाहिए मेरी कहां मिस्टेक है. सो प्लीज स्टबर्न नहीं होना चाहिए. इफ यू मेड सम मिस्टेक्स इन द पास्ट, इट्स टाइम टू रिग्रेट, इट्स टाइम टू रेक्टिफाई योर सेल्फ, इट्स टाइम टू अपोलोजाइज टू योर पेरेंट्स बिफोर इट्स टू लेट. इससे पहले कि डोर बंद हो जाए. मैं फिर भाई पढ़ रहा था, एक आलिम साहब थे, उनकी वालदा का इंतकाल हुआ. एंड ही स्टार्ट क्राइंग. लोग कह रहे हैं हजरत क्या हो गया. कहने लगे कि एक जन्नत का दरवाजा बंद हो गया. द डोर ऑफ जन्नत इज क्लोज. यानी माँ बाप जो है, जन्नत के दरवाजे दो खुले हुए हैं जब तक ये जिंदा है. बोले जन्नत का दरवाजा बंद हो गया, रो नहीं तो क्या करूं. लेकिन दोज अनफॉर्चुनेट पीपल दे डोंट रियलाइज द इंपॉर्टेंस ऑफ द पेरेंट्स इन द लाइफ. क्या फरमाते हैं.
बिस्मिल्लाहिर्रहमान शाह जी, आज ना टॉपिक जड़ा है ना, एक तो चूंकि असान दावत इस्लामी ना नारा ही यही है, असा अपनी तो सारी दुनिया ने लोगों ने सलाह की कोशिश करनी है. ठीक, उसने विच ये मैं समझना कि इसना बहुत वाइटल रोल आज ने जड़ा टॉपिक का जी. देखो अल्लाह ताला हर चीज की कुछ मकसद वास्ता पैदा किया हुआ, बगैर मकसद सो कोई चीज नहीं. उसने हर चीज नहीं, रीजन नहीं, निकी सुख नहीं, तो बड़ी तक भावे आसमान जमीन जिस गल करो. अच्छा हूँ इसने भी हजरत इंसान की भी अल्लाह ताला पैदा किया, इसने भी कोई मकसद है पैदा करने ना. ठीक है. अच्छा इससे पैदा करने से बाद फिर इसने पर अल्लाह ताला जिम्मेदारियां बनिया. यानी अल्लाह ताला यानी यह है कि मैं जिन्नात इंसाना की सिर्फ अपनी इबादत वास्ते पैदा किया. अच्छा हूँ इबादत असली जिम्मेदारी है
जी.
कुछ जिम्मेदारियां हैं जड़ियां अल्लाह ताला ने नाल मुतल्लकियां इबादत करनी, नमाज पढ़नी, रोजा दी हुक्म है उसने. तो कुछ मामलात है और वो मामलात जिम्मेदारियां उन्होंने हने के हकूक है जड़े अल्लाह ने हक है, यह भी जिम्मेदारी बंदियां ने हक है, यह भी जिम्मेदारी. इन हकूक विचों जिम्मेदारियां चो सब सो ज्यादा जड़ा ना जिम्मेदारी वालदैन ने पै लई है. अच्छा हूँ अस इस पर क्यों गुफ्तगू करने हैं, अस क्यों आखने वालदैन देखभाल करो, उन्होंने करनी खिदमत करनी, उन्हें खुश रखना, क्यों अल्लाह ताला तो उसने हबीब सल्लल्लाहु ताला ने तरफ हुक्म आया.
सुभान
अल्लाह. और फिर जरा ना सो देखो सूरा बनी इसराइल विच अल्लाह ताला फरमाया कि जोड़ी आयत शुरू होनी वक्तदार अबू का अल्लाह ताला डिसाइड करी छोड़िया, फैसला हो ही गया कि इबादत उसे नहीं करनी. नाल ही वालदैन पर अच्छा सलूक करने ना आया, एहसान करने. एहसान ये होना, ये नहीं होया कि तुसा मिकी कोई गिफ्ट दिता मैं भी चाहिए दिता ना. एहसान ना उसने सु बदी ते करने की आने एहसान जी. अच्छा हूं इसने विच वालदैन नाल देखो ना क्यों एक मैं उसकी थोड़ा लेके चले. देखो बाकी चीजा जितनी भी हैं, चलो जानवर भी ले लो पैदा हुए, उन्होंने भी आपस में जिस कुछ ज्यादा की उसी वो उसने जड़ा ना आपस बदला के नहीं तो मिट्टी इंसान ना ले नहीं हो लगा. और अल्लाह ताला एम नहीं फरमाया मुसलमाना की हुक्म होया वा ताकीद हुई, इंसान की हुक्म होया हर इंसान की. और इस पे है कि सूरह अनकबूत इच्छा और ਅਸਾਂ ਹਰ ਇਨਸਾਨ ਕੀ ਆਪਣੇ ਮਾਓ ਪਿਓ ਨਾਲ ਅੱਛਾ ਸਲੂਕ ਕਰਨ ਦੀ ਤਾਕੀਦ ਕੀਤੀ, ਇੰਸਟਰਕਸ਼ਨਸ ਆਈਆਂ ਹੋਈਆਂ। ਅੱਛਾ, ਹੁਣ ਇਸ ਤਾਕੀਦ ਨਾਲ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜਾ ਅਮਲ ਕਰਸੀ ਇਸੇ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਮਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋ ਜਾਣ ਲੱਗੀ ਸੀ ਜਾਨਵਰਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਫਿਰ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਸੀ ਸਹੀ ਜੰਨਤੀ ਕਿ ਦੋਜ਼ਖੀ, ਅੱਗ ਜਾਂ ਨਹਿਮਤਾਂ। ਉਸਨੇ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚਣੇ ਤੱਕ ਜਿਹੜਾ ਆਨੇ ਨੇ ਕਿ ਉਹ ਵੀ ਕਾਮਯਾਬ ਉਹ ਹੀ ਹੋਈ ਗਿਆ ਜਿਹੜਾ ਕਿ ਜੰਨਤ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚੀ ਗਿਆ। ਉਸ ਕਾਮਯਾਬੀ 'ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਬੜਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਯਾਨੀ ਇਬਾਦਤ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵਾਲਦੈਨ ਨਾਲ ਜਿਹੜਾ ਉਸਨੇ ਸਲੂਕ ਕਰਨਾ, ਉਹ ਅਸਾਂ ਕਿ ਜੰਨਤ 'ਚ ਖੜਨੇ ਵਾਸਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ ਹੈ। ਤਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪਿਆ ਬਈ ਰੋਜ਼ ਜੀ, ਨਫਲਾਂ ਪਰ ਨਫਲ ਬੜਾ ਸੁਨਤਾਂ ਦਾ ਪਾਬੰਦ ਹੈ ਨਾ, ਬਾਰ ਸਾਲ ਅੱਜ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਉਮਰੇ ਪਰ ਲੋਕਾਂ ਕੇ ਭੇਜ ਰਿਹਾ, ਵਾਲਦਾ ਕੇ ਪੁੱਛਿਆ ਹੀ ਕੌਣ, ਪੁੱਛਣਾ ਹੀ ਕੌਣ, ਕੋਈ ਖਾਣੇ ਪੀਣੇ ਨਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਵਿਚਾਰੀ ਭੁੱਖੀ, ਮਤਲਬ ਕਿ ਕੋਈ ਦੂਸਰੇ ਆਪਣੇ ਮਾਮਲਾਤ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ, ਕੋਈ ਉਸਨਾ ਅਮਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਅਗਰ ਉਸਨੀ ਮਾਂ ਜਾਂ ਉਸਨੇ ਵਾਦਤ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰੀ ਤੌਰ ਵਿੱਚ ਉਸ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ।
ਮਾਂ ਬਾਪ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੋ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਇੱਕ ਉਸੂਲ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੀਜੀਏ ਆਪ, ਕੋਈ ਨਫਿਲ ਕੋਈ ਖੈਰਾਤ ਕੋਈ ਸਦਕਾ, ਨਥਿੰਗ ਵਿਲ ਐਕਸੈਪਟ ਇਨ ਦਾ ਕੋਰਟ ਆਫ ਅੱਲਾਹ। ਵੀ ਆਰ ਡੂਇੰਗ ਆਲ ਦੀਸ ਗੁੱਡ ਡੀਡਸ ਐਂਡ ਗੁੱਡ ਥਿੰਗਸ, ਵਾਈ? ਟੂ ਪਲੀਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਆਲਮਾਈਟੀ। ਹਮੇ ਇੱਕ ਉਸੂਲ ਦੇ ਦਿਆ ਗਿਆ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਵੀ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ ਤੋ ਰੱਬ ਨਾਰਾਜ਼ ਹੈ, ਤੋ ਫਿਰ ਫਾਇਦਾ ਕਿਆ ਹੋ ਰਹਾ ਹੈ? ਉਨਕੋ ਨਾਰਾਜ਼ ਥੋੜਾ ਸਾ ਹਕਮਤ ਅਮਲੀ ਇਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲੇ, ਠੀਕ ਹੈ, ਹੋਤਾ ਹੈ ਕਿਸੀ ਕੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਕੇ ਬਾਰੇ ਮੇਂ ਤੋ ਆਪ ਵੀ ਤੋ ਬਚਪਨ ਮੇਂ ਬਹੁਤ ਕੁਛ ਕਰਤੇ ਥੇ ਨਾ, ਆਪ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਜੋ ਆਪਣੇ ਬੱਚੋਂ ਹੋਗੇ ਆਪਣੇ ਬਹਿਣ ਭਾਈ ਕੋ ਦੇਖੇ, ਦ ਵੇ ਦੇ ਮਿਸਬਿਹੇਵਿੰਗ, ਬਟ ਯੋਰ ਪੇਰੈਂਟਸ ਹਾਊ ਦੇ ਟੈਕਲਿੰਗ, ਯੂ ਕਾਨ ਕੰਟਰੋਲ ਯੋਰ ਓਨ ਚਾਈਲਡ ਔਰ ਯੋਰ ਬ੍ਰਦਰ ਐਂਡ ਸਿਸਟਰ ਫੋਰ ਵਨ ਡੇ, ਐਂਡ ਥਰੂ ਆਊਟ ਦੇ ਲਾਈਫ ਦੇ ਲੁਕਿੰਗ ਆਫਟਰ ਯੂ, ਦੇ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸਿੰਗ ਐਵਰੀਥਿੰਗ, ਨਾਓ ਵੈਨ ਯੂ ਗਰੋ ਅਪ ਯੂ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਦੈਮ। ਕਿਆ ਕਹਿੰਦੇ ਹੈ ਹਾਰੂਨ ਭਾਈ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਨੀਡ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਇਨ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ, ਇਜ਼ ਮਾਈ ਲਾਈਫ, ਇਜ਼ ਮਾਈ ਮੈਰਿਜ, ਇਜ਼ ਮਾਈ ਵੈਡਿੰਗ, ਆਈ ਵਾਂਟ ਟੂ ਡੂ ਦੇਅਰ, ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ, ਇਫ ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਵ ਮਾਈ ਪੇਰੈਂਟਸ ਆਈ ਡੋਂਟ ਕੇਅਰ ਅਬਾਊਟ ਇਟ, ਅਸਤਗਫਿਰੁੱਲਾਹ। ਯਾਨੀ ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਮਾਂ ਬਾਪ ਨੇ 20-25 ਸਾਲ ਪਾਲ ਪੋਸ ਕੇ ਆਪਕੋ ਬੜਾ ਕੀਆ, ਇਹ ਸਾਰਾ ਜਿਸਮ ਇਹ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ੇ ਉਨ੍ਹੀਂ ਕੀ ਬਦੌਲਤ ਮਿਲੀ ਹੈ, ਆਜ ਕੁਛ ਦਿਨੋਂ ਕੇ ਲਈ ਕਿਸੀ ਕੇ ਪੀਛੇ ਆਪ ਉਨ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੋ ਛੋੜ ਕਰ ਜਾ ਰਹੇ, ਕਭੀ ਵੀ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਸਕਤੇ, ਕਭੀ ਵੀ ਸਕੂਨ ਮੇਂ ਨਹੀਂ ਪਾ ਸਕਤੇ, ਉਨਕੋ ਕਭੀ ਵੀ ਦੁਨੀਆ ਮੇਂ ਇੱਜ਼ਤ ਨਹੀਂ ਮਿਲਤੀ ਜਿਨ੍ਹੋਂਨੇ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਬਾਪ ਕੀ ਡਿਸਰਿਸਪੈਕਟ ਕੀ ਹੋਗੀ, ਇਹ ਯਾਦ ਰੱਖੀਏਗਾ। ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਕੋ ਕਾਮਯਾਬ ਬਨਾਨਾ ਚਾਹਤੇ, ਆਲਵੇਜ਼ ਆਲਵੇਜ਼ ਰਿਸਪੈਕਟਫੁਲ ਟੂ ਯੋਰ ਪੈਰੈਂਟਸ, ਆਲਵੇਜ਼ ਗਿਵ ਰਿਸਪੈਕਟ। ਯੈਸ, ਹੋਤਾ ਹੈ ਓਲਡ ਏਜ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਉਨਕੀ ਜ਼ਬਾਨ ਉਨਕੀ ਚੀਜ਼ੇ ਵੋ ਨਹੀਂ ਹੋਤੀ, ਨਹੀਂ ਸੋਚ ਸਕਤੇ, ਇਗਨੋਰ ਕਰੇਂ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰੇਂ, ਗਿਵ ਟਾਈਮ ਟੂ ਦੈਮ। ਬਹੁਤ ਸੋਫਟ ਬੋਲਣੇ ਕੀ ਹਾਜਤ ਹੋਤੀ, ਬਹੁਤ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨੇ ਕੀ ਹਾਜਤ ਹੋਤੀ, ਹੋਤੇ ਮਾਮਲਾ ਤਾਂ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਲੇਕਿਨ ਉਹਨੇ ਕਿਤਨਾ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕੀਆ, ਇਹ ਵੀ ਤਾਂ ਸੋਚੇ ਨਾ ਆਪ, ਕਭੀ ਇਸਕੋ ਨਹੀਂ ਲੇਤੇ ਹਾਰੂਨ ਭਾਈ, ਆਪਣਾ ਹੀ ਸੋਚ ਰਿਹਾ ਹੋਤਾ, ਬੰਦਾ ਮਫਾਦ ਪਰਸ ਹੈ ਨਾ, ਸੈਲਫਿਸ਼ ਹੈ ਇਸ ਲਈ।
ਡੈਫੀਨਿਟਲੀ ਸਰ, ਸੋ ਬੰਦ ਯੂ ਨੋ ਇਟ ਗਿਵਸ ਮੀ ਦਾ ਪ੍ਰਿੰਸ ਮਾਈਂਡ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਆਫ ਵਾਂਸ ਅ ਫਾਦਰ ਐਂਡ ਅ ਸਨ, ਦੇ ਵਰ ਇਨ ਅ ਪਾਰਕ ਐਂਡ ਦੇ ਵੈਂਟ ਅਪ ਅ ਹਿਲ, ਐਂਡ ਦਾ ਫਾਦਰ ਹੀ ਹੈਡ ਅ ਲਿਟਲ ਯੂ ਨੋ ਲਾਈਕ ਅ ਟੈਨਿਸ ਬਾਲ ਵਿਦ ਹਿਮ, ਐਂਡ ਹੀ ਥਰੋ ਇਟ ਡਾਊਨ ਦਾ ਹਿਲ, and he said to the son, can you get that for me please? So the son, he went down the hill, got to the ball, picked it up, came back, and was slightly tired, gave it to the father. The father again, what did he do? He throws the ball again. So the son's like, okay, fine. He goes down the hill, gets the ball, comes back up, and suffers a few times, and eventually, you know, the son, he gets frustrated, like, dad, why do you keep doing this? You know, like, is everything okay? And the father said that, you know, son, when you were younger, you would come up the same hill and you throw this ball, and no matter how many times you throw it down, I would go down and I would get it for you, because I saw that this was what made you happy.
Allah.
And Allah. I didn't complain once. I didn't ask you, you know, shout at you, why you keep throwing it? Why are you doing this? I knew because it was making you happy, I kept on doing it. And, you know, subhanAllah, when the roles are reversed, it seems like, you know, they're a burden on us, and you know, we get really agitated with them really quickly. And, you know, generally, subhanAllah, when even you mentioned the topic initially, I was just thinking, subhanAllah, with a lot of these topics that we discuss, it just goes to show how great and how complete of a religion our Islam really is. That it teaches us the things that we don't even know we need teaching about. And it emphasizes the thing to us that are the very core basics, not just for, you know, Muslims, but for humans generally. Like the respect of parents, I believe, is something that every single human being should have within themselves. And we see this, another, you could say, an evidence to support this is that those people who are, you know, brought up without both of their parents, or they have troublesome childhoods, you see the result of that when they grow up. You see the result of, when fathers leave and the mothers have to, for example, raise children up themselves, how sometimes the boys, the guys, they grow up without any confidence. They're not able to speak properly. They're not able to do things properly. And this really shows the importance of parents in a person's life, in a person's career, in his development. And subhanAllah, if we go towards the reward that one can attain just by serving their parents, it's not just mentioned once. Many, many narrations you will find and see, many, many ahadiths you will find. And I'll just mention one of them and move on. And that is that Prophet ﷺ once said that every righteous child, now the keyword here is a righteous child as well, so the child has to be a good child as well, who casts a look of mercy and affection upon his parents. He looks at his parents with love and affection, which we should all do anyway, shall be granted for every look of his rewards equivalent to that of an accepted Hajj.
SubhanAllah.
We've just had,
Allahu
Akbar. We know, firstly, the financial strain that you have to go through to actually go Hajj. People save up their entire lives, especially from the subcontinent, India, Pakistan. People, they have to save up their entire lives, bit by bit, to actually make the journey. Then when you go there, the difficulties you have to go through, staying in ihram, not getting food and drink on time, the heat, and all these other difficulties you have to endure for the journey of Hajj. All that to do Hajj, even then you don't know if it's accepted or not. Obviously, when you do it, you make dua to Allah that I've done it, please accept it from us. But here the Prophet ﷺ is saying, you look at your parents with a merciful gaze, with a gaze of affection, once. And for every look, you will get the reward of an accepted Hajj. Hajj Mabrur.
SubhanAllah.
And those around the Prophet ﷺ at the time, they asked that, oh Prophet of Allah ﷺ, even if he were to look at them 100 times a day, the Prophet ﷺ said, indeed, Allah Azzawajal is the greatest and most kind. So just this one narration gives us so much to take from it. Puts into context so many things. But the initial statement was that the child has to be righteous as well.
Hmm.
So it's not that, we consider ourselves to be everything, and when we treat them like this and like that, and then we try to make ourselves hopeful of a narration like this, we have to be good towards them initially. And we'll come again later on this concept of Mother's Day and Father's Day, where people think that this love and affection is only for 24 hours, when really it's far from reality. But inshallah, as we go on, we'll
listen. Throughout your life, you have to show your love, affection to your parents.
Mother's Day and Father's Day, since it's been mentioned, is a cheap gimmick of this materialistic society. Love has to be shown unconditionally. It has to be shown by your actions. They like the love that's shown unconditionally by your parents, no matter what a child does.
Allah.
Whatever he does, he's our son. She's our daughter. They will love them unconditionally. And like you mentioned, they will always want what's best for you. Remember these words. The two most trusted advisors you have in your life are your parents.
Bishak.
The most trusted advisors. When you understand this, they will only want what's good for you. They will only say something that is good for you. It's coming from a good place. You may not want to hear it. You may think, I want to go do this. Why are they telling me not to? Why are they telling you? You can't understand it. Once you understand this concept that they always want what's best for you through their unconditional love for you, they don't want anything else. They just want you to do best. They don't want you to go and trip up, because they've got the experience.
Yeah.
They've got the wisdom. They've been through what you've been through.
So take the advantage.
Once you understand this, they're your teachers. Mm. Take the advantage. We were talking about sacrifices of parents, and I was thinking, Mara, these are the things that we know about. What about all the things that we don't know about that they've done for us?
Allah.
And say, Saab, without a shadow of a doubt, your mother and father have been a shield for you throughout your life, through so many hardships and difficulties and worries that you were going to go through, and they protected you.
Hmm.
They've taken the hit, your father, your mother, because they want to protect you. This thing of protection. And they've taken it themselves. And then we talk about giving to our parents like it's a burden. So you said we shouldn't be putting our parents in a situation where they're having to come to us to ask for something. They shouldn't have to ask us for something. Mm. We shouldn't even ask them whether they want something. Did they ask us? They just fed us. They clothed us. They helped us. They could see it on our face what we needed. They could hear it from our cry what we needed. But we don't pay that attention to our parents. Mm. That do they need some new clothes? Do they need some money? Do they need to go and do this or that? Like they run their worldly affairs. Now that they're retired, they may not be able to do those things. Mm. We should just give it to them. I had a friend of mine and we were going on a trip. And he mentioned a really beautiful thing that stuck with me. And he said, he was late to go away. And he said, look, I had to go to my mother's house and I put an envelope under a pillow. And I don't give it to her because she won't take it. And I won't ask her, but I know that I'll give it there. And that's, you know, it makes me feel better and it'll make her feel happy as well. Mm. He didn't ask her because he knows she'll say no. He didn't give her the mocha, the opportunity to ask him. But he gives it anyway and gives it in such a way where nobody else knows either. And this sort of thing, it stuck in my mind that this is the mentality that we need to adopt. And I thought, this is the sort of friend that I need to keep as well.
SubhanAllah.
Alhamdulillah. Azawajal. We need to understand that these are our trusted advisors. We need to understand the sacrifices that they've made. And we need to help them. Because no doubt, the more and more we help them, the more and more blessings we'll have in our life. The more and more they'll be pleased with us, the more and more Allah will be pleased with us.
SubhanAllah. MashaAllah, aapne kafi cheeze explain ki, no doubt, if you look throughout the life, आप बहुत सारी चीजें ले सकते हैं फीस भाई. वन ऑफ द पर्सन समबडी आस्क योर पेरेंट्स लिविंग विद यू विद योर ब्रदर एंड दे से नो आई एम लिविंग विद माय पेरेंट्स. कमाल का जुमला उसने अदा किया. बोला वो मेरे साथ नहीं रह रहे, मैं उनके साथ रह रहा. लुक एट द लॉजिक बिहाइंड इट. दोज हु हैव, कहते ना कि अल्लाह ने खास जिन पे करम किया, दे रियलाइज द रिस्पेक्ट ऑफ देयर पेरेंट्स. समबडी से आई एम व्हाट एवर माय पेरेंट आस्क आई ऑलवेज गिव देम बट दे स्टिल नॉट हैप्पी विद मी. द वे यू एक्सप्लेन and the same as one person, they say, look, Maulana Sahib, I'm trying to even do everything what they ask. Wo kehte yahi to problem hai. Bole, why this is the problem? Kehte hai ki jab tum chote the, tumhare bin mange unhone sab kuch diya. Tumhara pehla thermometer bhi unki ungli thi. Tumhari pehli ghiza bhi maa ki thi. Tumhari ek ek cheez kapda maa baap ne bagair mange diya. Tum aaj wait kyun karte ho tumse mange? Yahi to galat baat hai. तुम बगैर मांगे उनको दो, बगैर उनकी हाजत के उनको दो, तब मजे की बात है. ये बंदा कहता है यार मैं दे तो रहा हूं, मैं पूरा तो कर रहा हूं, लेकिन होता यही है. अनलिस्ट बिकॉज वी आर सेल्फिश. सीरियसली टेक दिस वर्ड्स. बिकॉज व्हेन 2, 3, 4, 5 टिल 10 इयर्स वी नीड द थिंग, वी ऑलवेज डिपेंड ऑन आवर फादर एंड दे आर आवर टीचर. दे आर द बेस्ट. ओवर डैड यू आर द बेस्ट. मदर यू आर द बेस्ट. बिकॉज वी सेल्फिश. देन 15 and 20, 25 इयर्स दे आर विलन इन आवर लाइफ. वो हमारी जिंदगी में विलन बन जाते हैं. हालांकि दे आर द थ्रू आउट देयर लाइफ, दे आर द गाइड पोस्ट फॉर अस थ्रू आउट देयर लाइफ. दुनिया में वो हमें बचाना चाहते हैं जिन मुश्किलात से वो गुजरे हैं, लेकिन हम क्या करते हैं, हम उनको अपना दुश्मन समझते हैं. नहीं नहीं, यू डोंट नो एनीथिंग यार. सब कुछ पता है. जब बोल नहीं सकते थे तब भी उनको पता था. आप बोलते हो आपको पता नहीं है. तो बहुत प्रॉब्लम हो. अच्छा, जिस कल्चर में हम रहते हैं हफीज भाई, यहाँ पे तो बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम है. यानी कि कुत्ते के लिए टाइम है, बिल्ली के लिए टाइम है, जानवरों के लिए दे हैव टाइम बट नो टाइम फॉर देयर पेरेंट्स. यानी मुफ्ती कासिम साहब ने बयान किया, बोले दे विल टेक 7 days ऑफ फ्रॉम द वर्क, 8 days व्हाई द डॉग वाजंट वेल. और माँ बाप है कभी 7 दिन की छुट्टी माँ बाप के लिए लेते हुए आपने नहीं देखा होगा इन मुल्कों के अंदर. यानी ये कल्चर है. जानवरों से हमदर्दी करने का ये मतलब नहीं है कि बड़े अच्छे इंसान हो गए. यानी माँ बाप जो अशरफुल मखलूकात इंसान जो है, उसको छोड़कर जानवर के लिए टाइम निकाल लो. जानवर के राइट्स हैं, वो भी इस्लाम ने जो दिए. लेकिन उससे बढ़कर तुम्हारे माँ बाप के राइट्स हैं, वो तुम पूरे नहीं कर रहे हो. जानवर के लिए कर रहे हो. देखो यार क्या इस मुल्क के अंदर ये. अच्छा, वो जॉब भी दी हुई है, ठीक है, एनिमल है, आप लिख कर देते हैं, जॉब अप्रूव हो जाती है. आपकी छुट्टी जो होती है, जॉब की आपकी हॉलीडे अप्रूव कर देते हैं. लेकिन माँ बाप बीमार है तो बंदा खुद ही नहीं करता कि यार मैं कोई अप्रूव करवा लूँ कि मेरे माँ बाप बीमार है, यानी मेंटेलिटी उस लेवल पे नहीं पहुंची हुई है लोगों की। अल्लाह करम फरमाए।
शाह जी बात यही जो सुन की थी ना, मेरा ख्याल है मैं समझना कि इस्लाम सु और इसी तालीमात सु दूरी और जिस माहौल च रहने हैं इसकी अडाप्ट करने नहीं, तखी 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 क्या होना पिया, ये नहीं कि ये ठीक है या गलत है उसकी अडाप्ट करने की कोशिश कर रहे। जो दसा ना कुत्ते मुहब्बत आ रहे पाकिस्तान भी कौन ही ना और इतने की आई है तखी तखी तक ठीक है। अच्छा दुए पास है माओ प्यो वास्ते सारे ओल्ड एज बेनीफिट होम बने हुए सारे कुछ बने हुए वो भी तखी तखी तक है, यानी जो कुछ तखने ना वो ही करने ना कि पढ़िया जाए सीख्या जाए सुनिया जाए, वरना तुम देखो कि तुम सारी गुफ्तगू की ते और असा फिर अच्छा अल्लाह अल्लाह तला ने तरफ जिस पास अस जाना मुड़ी जी देखो अल्लाह तला कुरान पा की चाहे देखो माशाल्लाह ने बड़ी अच्छी गुफ्तगू की, मैं तो सेंटीमेंटल हो जाए करने तो थोड़ी जज्बाती हो गया देखो माशाल्लाह क्या सी जड़ा है ना इन्ना देखो निके जो पैदा हो क्या हालत सी
जी
कपड़े परी छोड़ने से मैं वो सारा बनाना जी उसकी दयाल रात साफ करना फिर उसकी मतलब के नुहालना तुहालना खाना खिलाना जबकि असा अगे पिछे हाथ भी ना लाई सकने से उस वक्त वेला याद करो ठीक है। फिर बड़े हुए फिर और असने फिर स्कूल रोज असे के नाल खड़ना फिर असे के नाल पढ़ना पढ़ाना सिखाना फिर टाइम देना वो कदे नहीं थके वो कदे नहीं कुछ उन्हें आया यार उसने क्या बच्चे पैदा हो गए उसने क्या जी, लेकिन उसने बड़ी अच्छी माशाल्लाह कि वाहिद वालिद देखो ऐसा आया कद असद नहीं बोगस नहीं लेकिन वो चाहना वरना बंदे के वही जाना ना, लेकिन बच्चे ने बारे जाना माड़े को बेहतर हो
जी।
अज जिस बंदा बड़ा हो जाना इस वेले ने बारे च कुरान आना उफ नहीं आना उन्ना वेले जिसने बुढ़े हो जा सुनता है हो सकना वो बड़िया गल्ला करन तंग करन को और कुछ करन, मेरा रसूल बड़ा कुछ लिखा ए बाजी तो हूं जितने ना टाइम आ हो सकना बिस्तरे भी गंदे कर छोड़ने सुन वो सब कुछ तो सब बर्दाश्त करना और असा देखो आने के माओ प्यो वास्ते दुआ जिसले बंदा मंगना छोड़ देना ना रिस्क उसने कता करी
अल्लाह
जी और दुआ अल्लाह ताला खुद असा की इरशाद फरमाई रब्बिर हम हुमा कमा रब्बा यानी सगीरा या अल्लाह जिस असा निके हो इन्ना पर रहम किता सा इन्ना असा पर तू इस तरह उन्ना पर रहम
अल्लाह
जी तुसा इससे देखो कि अल्लाह ताला हर अमल ना बदला चाहे तो इस दुनिया ही दे या चाहे तो बाद च दे जी, लेकिन माओ भी उन्हें जो कर सुनो तुसा इससे दुनिया च बदला मिल सी
अल्लाह
इससे दुनिया च बदला मिल सी
अमा तुदीनो तो दान जैसा करोगे वैसा भरोगे
और एक खास वालदैन
वालदैन के लिए जैसा करोगे
खास वालदैन अल्लाह वो ने कोई कारी झगड़ा होना सा रोज ते फिर आखिर ये तय पाया लंबी हो जाने गल्ला फिर ते भाई बीवी जो रोज झगड़ा रोज झगड़ा रोज झगड़ा अब्बा और कल से उन्ना है नहीं इसकी ऊपर और छोड़ी छो ठीक है उन्ना है चलो जी अब्बा जी रोज झगड़ा होना रोज झगड़ा होना उसकी नहीं सा इलम उसकी नहीं सा पता माड़े नाल भी क्या होने वाला उसी बात ठीक है। अब्बा जी बोल रही अब इसला बनो तो तुसा की छोड़ी इसी अकोरा और कुछ जगह पर रोज ही झगड़ा होना रोज ही झगड़ा होना अच्छा बड़ा जोर लाई जरा मेरा सुनत वाकई सारे एक एक करी बयान किए हुए वही है कि अकल आने सही गल अकल आने इसके समझन तो उसको शौर हासिल कर उसने अपने गलती को तैयार दूर कर अच्छा वो उन्हें कि नहीं तो जंगल जाई रहे जाई रहे जाई रहे अगर कोई आई धोख तो उठे उन्हें कि है ने अब्बा जी कंबल वे तो है वे तो पुत्र बड़ी सख्त सर्दी उसी कोई नहीं कोई सजाओ तो रोक अच्छा वो कंबल बच्चा उस लैन उस जी मैं भी जासा नाल मैं भी जासा नाल करूँ नाल वो भी हुई पिया अच्छा इतना जिसल अबे ने कोई कंबल दे लगा ना भाई सर्दी उसी चलो एक कंबल रखी किनो तो पुत्र हाथ मारी ना तो वो कंबल चाहिए किंदा उसकी दो टोटे करी छोड़िया अब्बा है ना एक है कित तो पता कितनी सर्दी है दादा दाड़ा उसी कितनी सर्दी गुजारा कसी अद्धा कंबल आता है तू क्या किता तू इस तरह नहीं अब्बा जी
अल्लाह
अद्धा कंबल सो इन्हें कि दो ना तो जिसले मैं तुसा कि छोड़ने वास्ते आसा ना क्योंकि माड़े घर भी जो कुछ तुसा किता है उसी अगर अल्लाह ना कराए तो मैं भी तुसा किसे छोड़ने वास्ते आसा ना ये बाकी दुआ टोटा तुसा कि देसा
अल्लाह बच्चों को कहने की जरूरत नहीं होती हारून भाई बच्चे खुद ही ऑब्जर्व कर रहे होते हैं बच्चे देख रहे होते हैं उनकी तरबियत खुद ब खुद हो रही होती है कि आगे पीछे क्या हो रहा है जैसे आप नमाज पढ़ते हैं ना तो बच्चे बराबर में आगे खड़े हो जाएंगे तो हाउ यू बिहेविंग विद योर पेरेंट्स आप चाहते हैं कि अगर आपके बच्चे आपके रिस्पेक्ट करें आप अपने माँ बाप के रिस्पेक्ट करना शुरू कर दें फोन पर भी बात हो ना खड़े हो जाए उनको पता चले किसी को रिस्पेक्ट दे रहे हैं कल को आपके भी होगा ना तो आपके बच्चे भी खड़े होंगे, वो आए तो खड़े हो जाएं, वो आए सलाम में पहल करें, उनके हाथ चूमें, उनका माथा चूमें, उनसे दुआएं ले, आपके बच्चे ये देख रहे होंगे इंशाल्लाह 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 रब्बे करीम ने चाहा तो आपके बच्चे भी आपकी रिस्पेक्ट करने वाले बन जाएंगे, वरना हालात अच्छे नहीं आ रहे।
डेफिनेटली सर, सब आई थिंक राइट नाउ द टाइम वी आर इन राइट नाउ इट फील्स एज इफ थिंग्स आर अपसाइड डाउन, दे आर बीइंग फ्लिप्ड। ऑफन यू विल सी एंड यू विल हियर इन सोसाइटी द पेरेंट्स विल बी लाइक ओके यू नो आवर सो एंड सो सन्स बर्थडे इज कमिंग अप, वी नीड टू मेक श्योर ही हैज अ बिग नाइस पार्टी, वी नीड टू मेक श्योर वी गेट हिम दिस गिफ्ट, we need to make sure that you know he's pleased with it, and we you know we need to make sure that he's not disappointed with it, and they'll try to almost be like scared of their kids. That's the kind of I think time we're in or going towards now, where parents are scared of the children, whereas it should be the other way around. The children should be scared of disrespecting their parents, that you know I need to watch what I'm saying, watch what I'm doing, that maybe I say something or do something that will hurt and displease my parents. And I saw a beautiful narration which said that one should talk to his parents as if a slave talking to his strict master.
Allah subhanahu.
They give the example of children and parents as a slave and master. But, you know, what do we see around us today?
Other way around.
Do we see any of this kind of behavior? No. And again, like you mentioned before as well, that obviously each, according to the scenario and the situation, because, you know, things do differ sometimes. But generally, the ruling is that you speak with the utmost respect, and you know you don't do anything to displease them, because Islam has told us, and because we are Muslims, we abide by what the religion has told us, and we should ponder upon the consequences of what happens if we don't do that. And you know this is why we should be extremely careful of how we go about treating our parents. And you know, Sita, Subhanallah. I saw again a post on social media not too long ago, and it was a picture of a mobile phone, and it was an incoming call which said, "Mum," said, "decline or answer." And it said, "There are many people today who don't have this option, who wish that they could get this call. So whilst you have the opportunity, speak to your parents, treat them with love, shower them with kindness, and you will see the benefits of this. Like you said, with your own children treating you the way they should, and also with Allah Ta'ala being pleased with you.
Chalen ji, ek package bhi lena hai, aur uske baad inshallah ko kalam bhi sunte hain. Aaiye package dekhte hain.
In the laws of Sharia, there are two types of rights. Firstly, rights of Allah Almighty, and secondly, rights of people. Amongst the rights of people, the most important right is the right of parents. Its importance has been emphasized both in the Holy Quran and Hadith Mubarak, meaning the sayings of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam. In this day and age, where mankind has been drowned in an ocean of sins, one really bad sin we are committing is ignoring the rights of our parents. Allah Almighty, through various verses of the Holy Quran, has ordered us to obey our parents, to make them happy, to respect them, and never to cause any grief or even hurt their feelings. Verses such as Surah Nisa, Surah Ibrahim, Surah Maryam, Surah Ankabut, Surah Luqman, Surah Nuh, and many more verses, where we find the Holy Quran emphasizing the importance of parents' rights. Just to mention one verse, in Surah Luqman, verse 14, it stated, "And we have stressed on man concerning his parents, that give thanks to me and to your parents." Here Allah Almighty states that give thanks to me and to your parents. Allah Almighty is stating one of his rights along with the rights of parents. All religions of the world that have existed so far, all of them had one thing in common, and that was to respect your parents. The youth of today speak out for so-called independent life. Children of today are telling their parents, "I have a right to lead my own life, independent life. What's wrong with that? am I going to lead my life with restrictions placed upon me and be imprisoned by your way of thinking or living? Am I going to blindly follow your commands? Do I not have my own life with my children and my wife? Do I not have my own social status to worry about? If it was not for your parents, where would you have been? You would not have had this life. You would not have had this beautiful body. Nothing, my fellow brothers, nothing at all. No life whatsoever without our parents. It is because of our parents that we come into existence. Our real comfort awaits us after our death. But only if we have worked hard in this world, only if our parents are happy with us. So, my dear Islamic brothers and viewers of Madani Channel, let us go home today and ask our parents for forgiveness. Let us ask them to forgive all our disobedience, all our harsh words, and ask them to forgive us for anything we have unintentionally that may have upset them from. Sallu ala Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam.
Sallu ala Habib, sallallahu ta'ala ala Muhammad, sallallahu alayhi wa sallam. Harun bhai, kalam suna.
حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله نور محمد صلى الله لا إله إلا الله سوت نبي بو جهل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری موٹھی میں ہے کیا سوت نبی بو جہل گیا آقا سے اس نے یہ کہا گر ہو نبی بتلا ذرا میری موٹھی میں ہے کیا آقا کا فرمان ہوا اور فضل رحمان ہوا موٹھی سے کنکر بولا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی اپنی بہن سے بولے عمر یہ تو بتا کیا کرتی تھی میرے آنے سے پہلے کیا چھپ کے پڑھتی تھی بہن نے جب قرآن پڑھا سن کے کلام پاک خدا دل یہ عمر کا بول اٹھا لا الہ الا اللہ حسبی ربی جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ وہ جو بلال حبشی ہے سرور دیکھ کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے وہ جو بلال حبشی ہے سروردی کا پیارا ہے دنیا کے ہر عاشق کی آنکھوں کا وہ تارا ہے ظلم ہوئے کتنے ان پر سینے پہ رکھا پتھر پھر بھی زباں پر جاری تھا لا الہ الا اللہ حسب رب جل اللہ ما فی قلبی غیر اللہ نور محمد صلی اللہ لا الہ الا اللہ.
What would you like to say more?
I want to talk a little bit about planning. We have plans in our lives for many things. We have plans to increase our business or increase our jobs. We have plans for our children. We have plans to get a bigger house, plans to get the next car, plans for our next holidays, plans for absolutely everything. But one thing we may not plan is for our parents. Everybody gets older day by day. Every single body. And we make dua that our parents remain independent and dependent only upon Allah. We do this. But people get older. As people get older, they get weaker. As people get weaker, they get ill. Sure. They get certain illnesses and diseases. Like children, they may not be able to feed themselves. They may not be able to bath themselves. They may not be able to dress themselves. They may not even be able to walk themselves. This is a reality. This happens. This is life. Okay? We need to plan for this. A lack of planning, it seems, in today's society puts a lot of people into problems. So there may be some people that when the situation arises, they may want to help. But because of a lack of planning, they're unable to. So it leads them down a very, very difficult situation. So, for example, if you've stretched yourself so far that you've got a car on finance, your house is on finance, and you are stuck in a job, and you know that if you stop working, everything will collapse. You'll lose your house, you'll lose your car. You may even lose those people like your wife and your children who you've built this lifestyle for that you can't afford.
Mm.
And you can't stop that thing to look after your parents. Even every job, it will give you some leave, one day, two days, to look after somebody who is ill. Mm-hmm. But I'm talking about long-term care, because there may come a time when your parents need you as their long-term carer. Have we planned for that? Have we planned to live with our parents? I won't say our parents come and live with us. We plan to live with our parents and be that support that they'll need, without them having to feel embarrassed, without them having to ask? Or are we going to be those people that put our parents in the care homes,
Allah,
in the hospitals? Because one, we haven't planned for it because we've not deemed that important.
Mm.
Everything that's important to me, say, Sahib, I plan for.
See.
No, why haven't I planned for my parents?
Allah.
Why have I come into this situation where I've put myself that I haven't planned for the most important two people in my life? This is what I want to appeal to the viewers. Please plan for this. Please, this, you know, every single body is getting older. And we always make the dua that Allah Ta'ala keep them completely independent and only dependent on Allah Almighty, our Creator, our Lord. But we need to plan. Pray for the best, but always plan for those situations.
MashaAllah, MashaAllah. And they don't complain, they don't go to the people and knocking on the door and say, my son is doing this, my daughter is doing this. They're taking these things inside. And because of this, they're getting depression, they're getting illnesses, they're getting weaker and weaker day by day, because क्योंकि वो अपने स्ट्रेस में ले लेते हैं कि अपना दुख किसको बोले,
सही साहब,
अपने बच्चे को कवर करते हैं। माँ बाप कभी भी नहीं चाहते कि बच्चे की कोई चीज जो है वो डिस्क्लोज की जाए, मेरे बच्चे पे लोग आ, यानी कि ऑल द सोसाइटी विल डिनाई यू, विल रिफ्यूज यू, बट योर पेरेंट्स से पुत्र नो नो, माई पुत्र इज नॉट लाइक दिस, माई सन इज नॉट लाइक दिस, माई डॉटर इज नॉट लाइक दिस, आपको हर कोई रिजेक्ट कर देगा, लेकिन आपके माँ बाप आपको रिजेक्ट नहीं करते। माँ का फिर भी थोड़ा बहुत है, बाप के साथ तो पहले सुतेला शुरू करते हैं। हफीज भाई एक वाकया मैं क्विकली आपको करूँ, एक जा रहा था, बिजनेस पर्सन, फ्रॉम हिज ऑफिस इज गोइंग टू द होम इन द नाइट टाइम, एंड ही सॉ अ पर्सन, बाइक होती है ना, मोटर बाइक, मोटर बाइक के ऊपर जा रहा था, ही वॉज राइडिंग ऑन मोटर बाइक, एंड मोटर बाइक स्लिप हो गई, स्लिप ओवर एंड हर्ट हिमसेल्फ, थोड़ी सी ब्लीडिंग हुई, मोटर बाइक पे मूवमेंट जो होता है घुटने छिल जाते हैं कोनियों पे, उन्होंने देखा रात था, स्लिप हो गई, जाता है उसको उठाता है तो कहता है कि आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ, चोट लगी हुई थी उसकी थोड़ी सी, उन्होंने कहा मैं अपनी ये स्कूटर मेरी फैक्ट्री में खड़ी कर दो, मैं तुम्हारे घर छोड़ देता हूँ। बोलेगा मेरा घर करीब है। खैर बड़ी मुश्किल से उसको उठाता है, उसकी मोटर बाइक अपने ऑफिस में खड़ी करता है, कहता है सुबह यहाँ से लेना, आओ मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। रास्ते में जाते हुए देखा है कि उसकी ब्लीडिंग भी हो रही है, घर पे जाने पहले बोला इधर रोक लेना। बोला क्यों? बोला ये मुझे कुछ सामान लेना है, बिकॉज माई किड्स माई चिल्ड्रन हैज एट एनीथिंग ओवर देयर, कुछ खाया नहीं है, भूखे हैं, दे आर हंग्री, इसलिए मैं घर से निकला था। रात को सर्दी हो रही थी, यानी इट वॉज, वो लिखा हुआ है कि -2 -3 देर, क्या कहते हैं, घर के अंदर कोई खाने को चीज नहीं थी, बच्चों ने कहा हमें खाना खाना है, बाप सर्दी में निकला खाना लेने के लिए, वाइफ नॉट वेल, शी हैजंट कुक्ड एनीथिंग, तो उसने क्या किया, बच्चों ने कहा वी वांट दिस दिस थिंग, बर्गर पिज्जा भी खाना है, नहीं कहा चलो मैं लेकर आता हूँ। इस हालत में भी लिखा हुआ है जब वो जख्मी है उसको अपने बच्चों की फिक्र है, दिस इज योर फादर, रात को 2 बजे दूध लेने आपके लिए जाता, अपने लिए नहीं जाता है। आपकी जो डिजायर है कि मुझे ये खाना है, मुझे ये खाना है, किसके लिए करता है? आपके लिए करता है, आपका वालिद, अपने लिए नहीं करता है। अपने लिए तो उसको 100-200 pounds वीक के काफी थे, वो अगर ये ओवर टाइम कर रहा है ये आपके लिए कर रहा है, आपके जो है आपकी अम्मी जो है उनके लिए कर रहा है, ताकि अपने बच्चों को अपने घर वालों की लुक आफ्टर कर सके, और आप वालिद को खाते में नहीं लाते हैं कि फादर ने किया गया है, क्योंकि माँ से तो लालच होती है कुछ ना कुछ मिल जाता है, बाप को तो ATM मशीन समझा हुआ है कि ATM मशीन, यानी ये वो ATM मशीन है जिसमें कुछ ना भी होना तो वो परेशान होता है कि मैं कुछ करके दूं, इसको खाली ना करूं, ये वो ATM मशीन है वालिद आज के दौर में। क्या कहते हैं फीस भाई, बाप की कदर बहुत कम है आज के दौर में, रियलिटी यही है।
जन्नत का दरमियानी दरवाजों में से दरमियानी दरवाजा है,
ऐसे ही है
फीस भाई। और पीपल किसिंग द हैंड ऑफ एवरी अदर पर्सन बट नॉट देयर फादर, फादर की कदर ही को नहीं।
अस्तगफिरुल्लाह। असल में शाह जी मैं आखना चाहना ना कि लोग हर बंदा अपने फायदे वास्ते दौड़ना जी, बच्चे से बड़ा, लेकिन मेरा ख्याल है कि शायद ऐसा कि समझ नहीं है असल फायदा किस तरह हासिल हो सकना। मैं ये समझना, देखो कोई मुश्किल कोई परेशानी तकलीफ आई जासी ना, दुआ करे जी, इमाम साहब दुआ करे जी, कुछ साहब को सारे को बड़ा पीर तुसने कार बैठे हो, तुसने अम्मी सारे को बड़ा पीर है, तुसने अब्बा और सारे को बड़े पीर है जी, और इन्ना पीरा नी दुआ नाले लोग वली बनी गए।
अल्लाह गो एंड सिट विद योर पेरेंट्स, उनके दुआ के लिए हाथ उड़ गए ना, कोई टेंशन नहीं है, पहले आप उनकी दुआएं लेकर जाते थे परेशानी टल गई, आज अपने अपना रास्ता ले लिया, यानी खाने की बात कर रहे छुपा के लाते माँ बाप को ना पता चले,
अल्लाह
ये हो गया कि नहीं, वो आपकी पसंद की चीजें लाते थे, ढूंढ कर बेटे को ये पसंद है, मैंगो पसंद है, खाने में ये पसंद है, और आप छुपा के लेकर जाते हो, नहीं नहीं मैं अपनी बीवी के लिए अपने बच्चे के लिए, कभी उनको आउटिंग पे ले जाए। आप बचपना याद करें यार, व्हेन यू वर चाइल्ड, शबे बारात, शबे मेराज, 27वीं शब, ईद, बकरा ईद पे आपके 8-10 सूट जो हर साल बनते थे, फिर शूज आपको चाहिए होते थे, एवरीथिंग फॉर यू योर ब्रदर एंड योर सिस्टर, कहां से माँ बाप करते थे, आज आपके पास इतना है, माँ और बाप आपके लिए 2 सूट नहीं है पूरे साल में, तो सूट नहीं ले सकते यार, सोचने की बात है, इतना कुछ उन्होंने किया है, क्या आपने दिया क्या है, मिलकर रूखा सूखा आ जाते हैं, उनको हाजत नहीं है, प्यार मोहब्बत कुछ तो उनकी भी फीलिंग है ना, ऐसा थोड़ी है कि वो बेहिस लोग हैं, फीलिंग उनके अंदर भी है, लेकिन उनका बड़ापन है वो कहते नहीं है, लेकिन हमें खुद फीलिंग होनी चाहिए, हमारे अंदर एहसास होना चाहिए कि मैं अपने माँ बाप को कैसे खुश रखूं। चाय पे बैठ जाए, थोड़ी देर टाइम दे दे, आधा घंटा, एक घंटा, 15 मिनट बैठ जाए, डेली बेसिस पे बैठे और कैसे खैरियत से, बस वो उनको जो है ना दोबारा क्या कहते हैं उनमें जान डाल देगी ये चीजें। प्लीज सिट विद योर पेरेंट्स, लेकिन अपने माँ बाप के बारे में बुरी बात मत कहें। हारून भाई, इन द एंड क्या कहेंगे आप क्विकली?
It's not always about materialistic things. Of course, we should try and look after them, clothing them, feeding them, getting things for them. But sometimes it's just a matter of going to them, sitting with them, and just listening to them, talking to them, just, you know, asking them, how's your day been? You know, how are things? How are you feeling? Is anything upsetting you? And just giving them, a time and an ear to listen to. That's all they need sometimes. And, you know, that is worth more than many of your materialistic things that you can otherwise give to them. So sometimes, you know, don't overcomplicate it. Just take out some time. And like you said, it's all about priority. You know, we have time for every other thing in the world. But take some time out, whether it be on a daily basis, every other day, depending on the situation. But make sure you allocate some time just for your parents. And be grateful that you have this time. Because don't think of it as, I have to go to my parents. Think of it as, I'm able to go to my parents. I can go to my parents and speak to them and hug them and look at them and feel them and, you know, be in their presence. And inshallah, you'll be.
Quickly, short message. Kya denge Rizwan? Yeah.
Lastly, look, we all make mistakes. If they're alive, you've still got time. Go to them, ask them for forgiveness. Tell them you love them. Don't even say it. Hold them, kiss them, and make a change today. Value your parents.
नहीं, आपने कहा था देख के, लेकिन मैं कहूँ कह दे यार, क्या हो गया यार?
Some people get
आप दुनिया को क्या को माँ बाप से किस लिए शाय यार हैं? यार आप गौर करें यार, दुनिया को कहते हो आई लव यू, अपने दोस्त को कहते हो यार मैं तुम्हारे बगैर रह, माँ बाप के बगैर नहीं रह सकते, ये बोलो जाके उनको, दो बोलो तो सही यार मुझे माफ कर दें, बस मेरे से गलती हो गई है, आई लव यू, यकीन करो यार, इतना रब करीम इतना आपको देगा कि आप से संभलेगा नहीं संभाला जाएगा आपसे, सही बता रहा हूँ मैं। दो बोल बोले अपने माँ बाप से जाकर, इंशाल्लाह आप देखें, बोले इन्होंने बोला है खैर इनका, लेकिन मैं कहूंगा डोंट बी हेजिट, बंदा शर्म उस वक्त करे जब गुनाह की बात कर रहा हूँ, गुनाह पे शर्म होनी चाहिए। माँ बाप से तो प्यार का इजहार करना, माँ बाप को मोहब्बत से देखना, इसमें कोई शर्म नहीं होनी चाहिए। कीप वॉचिंग मदनी चैनल, लुक आफ्टर योरसेल्फ, सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
The path of knowledge is the way to Jannah. The path of knowledge is the way to Jannah.